ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي واد خمسا اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کا ایک خاص انداز تھا کہ لوگوں کو پہلے متوجہ فرماتے تھے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے کلاس روم میں استاد کہتا ہے کون میرے سوال کا جواب دے گا، تو بچے سب ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ایک سوال قائم کیا، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور حاصل کرے۔ اب آگے کوئی بھی بات دین کی سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی غرض کیا ہونی چاہیے، کیوں سیکھے آدمی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اور يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہ اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ گویا دین کی بات سیکھنے کے دو ہی مقصد ہوا کرتے ہیں، پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود عمل کا اہتمام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میرے اس آمادگی ظاہر کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور پانچ باتیں گنوائی۔ اس میں پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، یہی اس وقت مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ اور سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کون ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہو۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں جیسا سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف جیسی توجہ کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ایک آدمی جب دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نوافل جو اعمال ہیں उनके ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन गुनाहों को छोड़ने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, कि अल्लाह इनको किताब यानी कुरान पाक का इल्म अता फरमा। दूसरी दुआ बात अता फरमाई थी वफ़क्कीहु फिद्दीन, और दीन की समझ अता फरमा, जिनका लकब है हिब्रुल उम्मा, उम्मत के बड़े आलिम। उनसे एक आदमी ने पूछा कि एक आदमी है जो गुनाह करता है, अमल रजुलुन कलीलुल अमल कलीलुल ज़ुनूब आजबो इलैका अम रजुलुन कसीरुल अमल कसीरुल ज़ुनूब, एक आदमी अमाल कम करता है, फराइज वाजिबात पर इक्तिफा करता है, नवाफिल ज्यादा नहीं पढ़ता लेकिन गुनाह भी कम करता है। उसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी है जो आमाल बहुत ज्यादा करता है, फराइज वाजिबात के साथ नवाफिल का भी खूब एहतमाम, लेकिन जो है वो जो कम आमाल वाला जो गुनाह कम करता था ये गुनाह बहुत करता है। तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्बीहात पढ़ता है, लेकिन लोगों की गीबत भी करता है, लोगों को तकलीफें भी पहुंचाता है, लोगों के साथ मामलात में ठीक तरीके से पेश नहीं आता, मतलब यह है कि गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं करता। तो इन दोनों में आपके नजदीक कौन सा आदमी ज्यादा पसंदीदा है, आप किसको पसंद करते हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब में इरशाद फरमाया ला आदेलो बिस्सलामा, जो आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाता है उसकी इस खूबी के मुकाबले में मैं किसी और चीज को तरजीह देता नहीं। गुनाहों से अपने आप को बचाना ये बहुत अहम चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फराइज और वाजिबात कहाँ गए, तो आदमी जरा इस इरशाद में सोचेगा तो खुद ब खुद उसका जवाब मिल जाएगा कि भाई कोई आदमी फर्ज अगर अदा नहीं करता या वाजिबात को अदा नहीं करता तो ये क्या होगा, गुनहगार होगा, और जब गुनाह से बचने का एहतमाम करेगा तो फराइज और वाजिबात तो खुद ब खुद अदा करना ही। तो एक तरफ वो फराइज और वाजिबात की अदायगी का एहतमाम करता है, दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी से बचने का एहतमाम करता है, तो उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसको एक खास कुर्ब हासिल होता है। गुनाह जो है वो आदमी को अल्लाह से दूर करता है, लेकिन जब ये गुनाह से बचेगा तो उसके नतीजे में अल्लाह वाजिबात और फराइज की अदायगी भी हो रही है, गुनाह से बच भी रहा है, तो अल्लाह का एक कुर्ब हासिल होगा और फिर उसकी बरकत से अल्लाह ताला नवाफिल की भी इसको तौफीक अता फरमाएंगे। ये रमजान का महीना हमें क्यों दिया गया, रोजे अल्लाह ताला ने क्यों फर्ज किए, कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अललजीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए। तकवा का मतलब क्या है, हम लोगों के जहनों में गलत फहमी है, हम लफ्ज तकवा जब सुनते हैं ना तो यूं समझते हैं तकवा का मतलब यह है कि आदमी रात भर अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़ता रहे, दिन भर रोजे रखे, हर वक्त हाथ में तस्बीह हो और जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, हम तकवा इसको समझते हैं। नहीं, तकवा तो कुरान में अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया, और तकवा का मतलब यह है कि आदमी अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस सिलसिले में सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब में आखिर में यही बात फरमाई खलिद ज़ुनूब सगीरा व कबीरा ज़ाकतु का, गुनाहों को छोड़ दो चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इसी का नाम तकवा है। तो हकीकत तो यह है कि जब तक आदमी गुनाहों को नहीं छोड़ेगा वहां तक उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होगा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मकाम बड़ा ऊंचा है, पांचवें खलीफे राशिद इनको करार दिए करार दिया गया है, वो फरमाते हैं मैं चाहता हूं कि फराइज और वाजिब नमाजों के अलावा कोई नमाज न पढ़ूं, फर्ज रोजों के अलावा कोई रोजा न रखूं, फर्ज जक़ात के अलावा कोई और खैरात न करूं, फर्ज हज के अलावा और कोई हज अदा न करूं, और अपनी सारी ताकत और कुव्वत को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने के लिए इस्तेमाल करूं। गोया अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना, गुनाहों से बचना बड़ी अहमियत रखता है। एक बुजुर्ग को किसी ने तहज्जुद के मुतालिक पूछा तो उन्होंने जवाब में फरमाया खफिल्लाह बिन नहार व नम बिल लैल, दिन में अल्लाह से डरते रहो यानी गुनाहों से बचते रहो और रात को सो रहो, यानी तहज्जुद नहीं पढ़ोगे लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी से बचने का एहतमाम करोगे तो यही चीज जो है बड़ी अहमियत रखती है। एक साहब अपनी कौम को जो है नसीहत कर रहे थे और तहज्जुद के मुतालिक कि रात के सोने ने तुमको हलाक और बर्बाद कर दिया, तो एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे वो कहने लगे दिन की बेदारी ने इनको हलाक किया। यानी मतलब यह है कि दिन की बेदारी में जो गुनाह करते हैं उन गुनाहों के नतीजे में हलाक और बर्बाद हुए हैं। तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना यह बड़ी अहमियत रखता है, इसी पर ज्यादा मेहनत। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि आदमी जो है नवाफिल पर का जितना एहतमाम करता है उससे कई गुना एहतमाम उसको जो है गुनाहों से बचने का करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा अबदल आबिदून अफजल मिन तर्किहिम मा नहाहुमुल्लाह अन्हु, इबादत करने वालों ने अल्लाह की इससे बेहतर कोई इबादत नहीं की कि अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे अपने आप को बचाया रोका। बगैर गुनाह को छोड़े हुए कभी कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि अल्लाह के औलिया के ऊपर अल्लाह के दोस्तों पर वलियों के ऊपर कोई खौफ और गम नहीं है। कौन है वो? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए पर अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं। एक और जगह बारी ताला फरमाते हैं इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, ये तो हसर का सेगा है, यानी अल्लाह के वली वही लोग हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। गुनाह का इर्तिकाब करते हुए कभी कोई आदमी अल्लाह का वली बन सकता नहीं, याद रखो। इसलिए ज्यादा जोर इस पर लगाना है, फराइज वाजिबात की तो अदायगी अपनी जगह पर है लेकिन ज्यादा कुव्वत इसकी तरफ लगाइए कि अपने आप को अल्लाह तबरक तआला की नाफरमानी से गुनाहों से खास तौर पर बचाने का एहतमाम किया जाए। ये गुनाह जो है वो इबादात के नूर को और उसके असरात को खत्म कर देते हैं। एक इबादत आप एक ताअत अंजाम देंगे तो उसका नूर और फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपको दूसरी ताअत की तौफीक अता फरमाएंगे, लेकिन अगर आप गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे तो ये जो उसका समरा है वह हासिल होने वाला नहीं। यूं मिसाल से समझिए कि कोई आदमी बीमार है, दवाई करता है और परहेज भी बताया गया है लेकिन परहेज करता नहीं है, तो लाख रुपये की दवा करेगा तो भी जो है उसको सेहत आने वाली नहीं है, ये बदपरहेजी हमेशा उसको बीमारी ही में डाले रखेगी। हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई देखो दो चीजें हैं, एक तो है यानी एक बीमार आदमी के लिए दो चीजें हैं, एक तो यह है कि सेहत को हासिल करने की तदबीर करे और दूसरा नुकसानदेह चीज से बचा रहे। तो अगर उसके पास दवाई का इंतजाम नहीं है तो कम से कम नुकसानदेह चीजों से बचने का एहतमाम तो करे। तो हम जो है अपने आप को गुनाहों से जितना ज्यादा बचाने का एहतमाम करेंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह तबारक ताला का कुर्बा हासिल होगा। ये रमजान भी अल्लाह ताला रोजे भी जो दिए उसमें भी हमें यही सबक दिया गया है कि भाई आदमी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब रोजे की नीयत कर लेता है तो तीन चीजें खाना पीना और अपनी बीवी के साथ सोहबत करना इससे अपने आप को दूर रखता है। हालांकि ये तीन चीजें वो हैं कि जो रोजे के अलावा आदमी के लिए क्या है, हलाल है। आदमी रोजे के अलावा खा सकता है, पी सकता है, अपनी बीवी के साथ सोहबत कर सकता है। रोजे में जब नियत कर ली तो उसको अपने आप को उससे बचाना है। तो एक आदमी जब एक मर्तबा रोजा रख लेता है, कैसा ही गुनहगार क्यों ना हो, कैसा ही बदकिरदार क्यों ना हो, लेकिन रोजे की जब नियत कर लेगा तो उसके बाद फिर चाहे उसको गर्मी के रोजों के अंदर कितनी सख्त प्यास क्यों न लगी हो, और घर के अंदर वो कमरे में है, कमरा बंद है, अंदर की कुंडी लगी हुई है, वहाँ फ्रिज के अंदर जूस भी मौजूद है, ठंडा पानी भी मौजूद है, लेकिन कभी भी वो हाथ नहीं लगाए। वो यूं सोचता है कि मैंने जिस अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रोजा रखा है वो मुझे देख रहा है। ये कैफियत रोजे में जो कैफियत होती है, रोजे से रोजे को बचाने के लिए जो कैफियत होती है, आदमी जहां दिल में ख्याल आता है कुछ खाने पीने का तो फौरन सोचता है अल्लाह मुझे देख रहा है। तो हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाह मरकदहु फरमाते हैं कि इसी कैफियत को जो है जरा कुछ बढ़ाने की जरूरत है। हम रोजे के अंदर जो चीजें हलाल हैं उनसे अपने आप को जब रोकते हैं तो जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हराम किया, खाली 24 घंटे के लिए नहीं, खाली रमजान के महीने के लिए नहीं, बल्कि जो है यानी खाली दिन भर के लिए नहीं बल्कि दिन और रात भर के लिए और 12 महीने के लिए जिनको हराम किया उनसे अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक तो ये रमजान का रोजा है, ये तो छोटा रोजा है, आदमी सुबह सादिक से लेकर गुरु आफ्ताब तक इन चीजों से अपने आप को रोकता है, और एक बड़ा रोजा है। बड़ा रोजा क्या है, बालिग होने के बाद से लेकर के मौत तक कोई भी चीज जो अल्लाह की नाफरमानी की हो उससे अपने आप को बचाए। तो मोमिन का ये बड़ा रोजा जो है उसका हमें एहतमाम करना है। अल्लाह तबारक ताला मुझको भी इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए, आपको भी दुआ कर ली।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सैयदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, तेरी मर्जियात पर हमको ज्यादा से ज्यादा चलाकर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों को अपनी जिंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक और सआदत अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों की मोहब्बत और गैरों के तरीकों की नफरत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। ए अल्लाह तमाम रजाइल से हमको पाक और साफ फरमा कर महासिन अखलाक से मुजयन फरमा। तेरी मारिफत और मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा। दवा में जिक्र और दवा में ताअत की हमें तौफीक अता फरमा। तमाम आमाल में इखलास इत्तिबा और एहतसाब की कैफियत नसीब फरमा। अल्लाह हमें हमारे अहलो आयाल और तमाम मुतालिकीन को सेहत कुव्वत आफियत सलामती दुनिया आखिरत की भलाइयों से मारामाल फरमा। हमारी तमाम जरूरतों की तू अपने खजाने गैब से किफालत फरमा। हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना। अल्लाह तो हमारी औलादों को अकायद हक्का उलूम नाफिया आमाल सालिहा अखलाक फाजिला से आरास्ता फरमा। बुरे अखलाक बुरे किरदार व गुफ्तार बुरे आदात व अतवार बुरी सोहबतों बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔